Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Ishavasya Upanishad, presented by Swami Sri Advaitananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम् कुर्व अकुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतम् समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। श्रुति ने विधान भी किया और निषेध भी किया। निषेध इसलिए किया जाता है कि विधि को प्रतिष्ठित करने के लिए जो विधान श्रुति करती है उसको मुमुक्षु के अंदर, साधक के अंदर, जिज्ञासु के अंदर, भक्त के अंदर, योगी के अंदर प्रतिष्ठित करने के लिए विधान करती है। और निषेध इसलिए करती है कि जो प्रतिष्ठित किया गया बोध या प्रतिष्ठित किया हुआ भाव, उस भाव में तदाकार होने में जो बाधकता है, भाव होना या ज्ञान होना दूसरी चीज है, तद्रूप होना, तदाकार होना दूसरी चीज है। भाव हम सुन करके करते हैं, ज्ञान हम पढ़ करके करते हैं या श्रवण मनन निधिध्यासन से करते हैं। ये सब कुछ होने पर भी यदि हम निषेध नहीं करते हैं तो तद्रूपता, तदाकारता, एकात्मता, अद्वैत की सिद्धि नहीं होगी। आप भगवत भाव कर लिया और उस भाव से भावित हो गए, आप उसे उसको सर्वत्र देख रहे हैं। सर्वत्र देखने का अर्थ एकात्मकता नहीं है। क्योंकि ये देखना जो तुम्हारा है, जानना जो है, करना जो बोवा करना है, जानना है, बोलना है, ये सब समाप्त होना चाहिए। अनेक श्रुतियों ने ये संकेत कर दिया कि ये होने का अद्वैत होने के बाद, एक रूप होने के बाद कौन देखेगा, किसको देखेगा, किससे देखेगा, त्रिपुटी मिटना चाहिए। कहने का मतलब क्या, एकात्मकता का अर्थ होता है त्रिपुटी समाप्त होना, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ध्याता ध्यान ध्येय, कर्ता भोग्य भोग, ये जो त्रिपुटी है, ये त्रिपुटी को ही शास्त्र संसार कहता है। संसार क्या है, ये त्रिपुटी ही है। ज्ञाता है या ज्ञेय है या ज्ञान है, ज्ञान है ज्ञाता और ज्ञेय समाप्त नहीं हुआ तो ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान तक ही रहता है, वो भी तुम्हारे संसार को समाप्त नहीं करता है ना तुम्हें अमृत बनाता है। इसलिए यह श्रुति निषेध जो करती है, विधान तो ब्रह्म का करती है, परमात्मा का करती है, ईश्वर का करती है, श्रुति विधान करती है और साधक को उसके अलावा जो भी है उसका निषेध करना है, वो भी बताती है कि तुम्हें करना क्या है, लेना क्या है और छोड़ना क्या है। इसलिए इस श्रुति के द्वारा स्पष्ट कर दिया कि तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृदह कस्यस्विद्धनम्। पहले बता दिया कि जो भी कुछ इस संसार के अंदर है, जगत्याम जगत, जो उत्पन्न होने वाला है, नष्ट होने वाला है, वो जगत है। ये उत्पत्ति और नाश, इसमें क्या है, आना और जाना, इसके अंदर क्या है, तो श्रुति कहती है ईश्वर। तुम्हारी प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक भाव, प्रत्येक विकार, परमात्मा से है, परमात्मा में है, परमात्मा का है और परमात्मा ही है। ये श्रुति ने स्पष्ट कर दिया और इसको मुमुक्षु को अपने अंदर प्रतिष्ठित करना करने के लिए ये विधान किया है। तुम्हारी जो मान्यता है, तुम्हारा जो ज्ञान है, तुम्हारा जो भाव है, इनका त्याग बता दिया। कैसा बता दिया वो भी मैंने अब कई दिन से इस पर विचार चल रहा है। त्याग छूट जाए परंतु त्याग त्याग मालूम न पड़े। जैसा सूर्य आ जाता है तो अंधकार, सूर्य या सूर्य का प्रकाश अंधकार को कहीं भगाता नहीं है। का भगाता है कहीं? कहीं भगाता नहीं है, परंतु अंधकार रहता भी नहीं है। कहीं जाता आता नहीं है, परंतु अंधकार रहता है क्या? अंधकार रहता भी नहीं है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि प्रकाश उस संपूर्ण अंधकार को प्रकाश प्रकाश बना देता है। क्या? प्रकाश जो है वो प्रकाश बना देता है। अंधकार को भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि अंधकार है ही नहीं, तो भागेगा कहां से? प्रश्न ये होता है, अंधकार की सिद्धि नहीं है, प्रकाश के अभाव में अंधकार भासता है, अंधकार होता नहीं है। क्या? प्रकाश के अभाव में अंधकार का भाष्य मानता है, अंधकार भास है, है प्रकाश ही, परंतु उस प्रकाश में आपको अंधकार की भ्रांति हो गई, उसका कारण रात्र। क्या है? उसका कारण है रात्र। सूर्य आता है तो सूर्य कोई उस अंधकार के साथ कोई संघर्ष नहीं करता है भगाने के लिए, ना कुछ भी करना पड़ता है। परंतु सूर्य के प्रकाश की प्रतिष्ठा पूर्ण रूप से होना जरूरी है। इसी प्रकार से आपके अंदर जो ज्ञान हो या जो भाव हो, इतना मजबूत होना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए, दृढ़ निश्चय हो, कहा है भगवान ने भी गीता के अंदर कहा, दृढ़ता होना चाहिए, प्रतिष्ठा उसी का नाम है। नहीं तो आप मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते फिर मूर्ति हिलती है क्या वहां से? इसलिए क्यों काम प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं कि नहीं? मूर्ति प्रतिष्ठा करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो श्रुति यही कहते हैं कि पहले मूर्ति को प्रतिष्ठित करो भाव के रूप में। क्या भाव के रूप में मूर्ति को प्रतिष्ठित करो? पहले मूर्ति को प्रतिष्ठित किया जाता है कि नहीं, फिर प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। प्राण प्रतिष्ठित करते हैं तो फिर क्या आता है उसमें? चैतन्यता आती है। चैतन्यता क्या आती है? चैतन्यता लाने के लिए, चेतनता लाने के लिए प्राण की प्रतिष्ठा की जाती है, क्योंकि प्राण ही उसको उसके अंदर लाता है। इसी प्रकार से यहां भी भावों से ईश्वर को प्रतिष्ठित करना है हृदय के अंदर, और फिर उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करना है ज्ञान से। क्या प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है? ज्ञान। फिर उसके अंदर ईश्वरत्व आता है, चेतनत्व आता है, और वो चेतनत्व सर्वसमर्थ होता है। इसी प्रकार से ये तदाकारता, ये चेतनत्व है। क्या एकाकारता, तदात्मकता, तादात्म्य, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, श्रुति उसी को कहती है। पहला ब्रह्मविद्ता अर्थात ब्रह्म को जानना, फिर ब्रह्म ब्रह्म के साथ एक बनने का पुरुषार्थ करना, और फिर ब्रह्म ही हो जाना। ब्रह्म होने के बाद कुछ रहेगा क्या? कुछ नहीं रहता है। इस बातों को श्रुति मां गृद कस्यस्विद धनम इसके द्वारा संकेत कर रही है, बता रही है तुम्हें क्या ग्रहण नहीं करना है। तीन त्यक्तेना, त्याग करना है, कैसा करना है तुम्हें मालूम भी नहीं होना चाहिए और त्याग भी होना चाहिए। जो मालूम पड़े, जिसको किया जाता है, जिसको कर्म कहा जाता है, त्याग कर्म नहीं होना चाहिए। क्या त्याग कर्म नहीं होना चाहिए? श्रुति ये कहती है कि त्याग को कर्म मत बनाओ, त्याग को भोग बनाओ। क्या श्रुति त्याग को कर्म बनाने के लिए नहीं संकेत करती है, त्याग को भोग बनना चाहिए, इसलिए कहती भुंजी था। और भोग भी हो, कहा कि महाराज हमने तो ये सुना कि भोग जो है, भोगे रोग भयम कुलेच्युति भयम वित्तीय नृपानुपालाद भयम, भर्तृहरि ने कहा कि भोग तो रोग का कारण होता है, फिर यहां श्रुति भोग की बात क्यों करती है? कहा कि नहीं है, परंतु वहां जो भोग कहा, विषय भोग, विषय भोग, नाम का भोग, रूप का भोग, स्पर्श का भोग, गंध का भोग आदि आदि जो है। देखो भोग दो प्रकार का है, एक मायात्मक, एक ईश्वरात्मक। एक जीवात्मक भोग है और एक आत्मात्मक भोग है। जीवात्मक जो भोग होता है वो इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त आदि के द्वारा जो होता है वो जीवात्मक भोग है, और आत्मात्मक भोग क्या है? आत्मात्मक भोग होता है कि इंद्रियों का इंद्रियपना निकल जाए, मन का मनपना निकल जाए, बुद्धि का बुद्धिपना निकल जाए और जीव का अहमपना निकल जाए, तब जो भोग होता है वो आत्मभोग। आत्मभोग का मतलब होता है ब्रह्म ही हो जाना। श्रुति इधर भी संकेत कर रही है, तेन त्यक्तेन भुंजी था, पहले परमात्मा को आपके अंदर भाव के रूप में प्रतिष्ठित करो, सर्वत्र भावना करो, सर्वम खलविदम ब्रह्म। ये भी श्रुति विधान करती है कि कण कण में तुम परमात्मा को देखने का अभ्यास करो, फिर जानने का अभ्यास करो, मानने का अभ्यास करो, जानने का अभ्यास करो और फिर होने का अभ्यास करो। यहां तक तो वो तुम्हारा कर्म है, होने तक। अब होने के बाद क्या रहेगा? जो रहेगा उसका नाम है भोग। क्या? क्योंकि वो रोग का कारण बन ही नहीं सकता है वो भोग। इसलिए यहां श्रुति कहती है तेन त्यक्तेन मुंजिता मा गृध कस्य स्विद्धनम। अब जो कोई ये अर्थ करते हैं कस्य स्विद्धनम, अब धन किसका, ऐसा प्रश्न करते हैं, अर्थात धन किसी का भी नहीं है, किसी का भी धन नहीं है, आज तक किसी का हुआ है? किसी का हुआ नहीं है, हो भी नहीं रहा और होगा भी नहीं। अब धन की परिभाषा अनेक है, अनेक प्रकार, अनेक प्रकार की वस्तुओं को हम धन कह सकते हैं, पदार्थ को धन कह सकते हैं, परंतु यह श्रुति जो धन की बात कर रही है वो कौन सा धन है? कस्य स्विद् धनम, धन का मतलब होता है जिसको भी तुम धारण करोगे। क्या? जिसको भी तुम अपने अंदर धारण करोगे। देखो इस वस्त्र को आपने धारण करते हैं तो वस्त्र धन बना कर नहीं बना है, नहीं तो आप उसकी चिंता क्यों करते हैं? इसको धन नहीं मानते, संपत्ति नहीं मानते तो आप उसकी चिंता करते, साफ सफाई की, उसको व्यवस्थित रखने की? तो प्रत्येक वस्तु धन है। एक ईश्वर धन है और एक जीव धन है। क्या? एक ईश्वर धन है और एक जीव धन है। भगवान ने गीता के 16वें अध्याय में जो दैवी संपदा और असुरी संपदा बताई कि नहीं है? दैवी संपदा ईश्वर की संपदा है, आसुरी संपदा जीव की संपदा है। क्या? क्योंकि जीव का धन कामात्मक, भोगात्मक और रोगात्मक, और ईश्वर की संपदा निष्कामात्मक, आनंद रूप, अमृत रूप। परंतु श्रुति चाहे इस प्रकार से भी धन का अर्थ करते हैं, दैवी संपदा असुरी संपदा से भी लगाते हैं, तो श्रुति परधन और स्वधन, मैंने कल बताया था, दूसरे के धन की और अपने धन की, दोनों के भी माग्रदो कामना मत कर, आकांक्षा मत कर, इच्छा मत कर, ना दूसरे की धन की कर, ना अपने धन की कर, ना ईश्वर के धन की कर और ना जीव के धन की कर। जीव का धन अविद्यामय, ईश्वर का धन ज्ञानमय। क्या? ईश्वर का धन ज्ञानमय। और ये दोनों भी धन, दोनों में से किसी भी धन को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं तो वो इच्छा तुम्हारे होने में बाधक होगी। ज्ञानेश्वर महाराज जी ने और खंडन खंडन खाद्यकार ने, ईश्वर का खंडन तो कर ही दिया है परंतु ईश्वर के ज्ञान का भी खंडन कर दिया। क्या? ईश्वर का तो खंडन कर ही दिया है परंतु ईश्वर के ज्ञान का भी खंडन कर दिया है, क्योंकि ये ज्ञान भी वैसा ही बाधक है जैसा अज्ञान बाधक है। ज्ञानेश्वर महाराज जी के अमृत अनुभव में लास्ट लास्ट में उन्होंने ज्ञान का भी खंडन कर दिया है, चेतन की चेतनता का ही खंडन कर दिया है। चेतन का तो खंडन नहीं हो सकता है परंतु चेतनता का खंडन हो सकता है। चेतनता कहेंगे तो जड़ता आएगी आएगी। क्या? चेतन कहा ना तो चेतन सापेक्षता है,